मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 16 मार्च 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस ऑडियो लेक्चर में मैं आपसे लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और मैं समझता हूं कि ये शब्द आपने कई बार सुना होगा और अखबारों में बार बार यह शब्द आपने पढ़ा भी होगा। देखिए, इसको पहले हम समझ लेते हैं। ये दो अलग अलग शब्द जरूर हैं, लेकिन सही मायने में यूं कह लीजिए कि ये एक ही पॉलिसी के दो पड़ाव हैं। लुक का मतलब है देखो, हिंदी में कहीं कहीं आपको देखो, पूर्व की ओर देखो, यह भी शब्द मिल जाएगा पढ़ने को। लुक, एक है लुक ईस्ट पॉलिसी, ये शुरुआत हुई थी, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, यानी कि पूर्व की ओर देखो, और इसकी शुरुआत करने वाले थे हमारे पीवी नरसिंघा राव जी, जो 91 से लेकर के आगे प्राइम मिनिस्टर रहे, और इसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे ही आगे बढ़ाया, और बाद में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुए तब भी उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। ये एक बहुत अच्छी बात है, कह लीजिए कि फ्रेंड्स की विदेश नीति जब आप पढ़ेंगे या जब हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को देखेंगे तो केंद्र में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की क्यों न हो, लेकिन आपको पॉलिसी में हमेशा एक कंटिन्यूटी दिखाई देगी, है ना। ये बात अलग है कि एक पर्टिकुलर टाइम था जब हमारा झुकाव रशिया की तरफ ज्यादा था और फिर किन्हीं कारणों से झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ता चला गया और फिर बाद में तो रशिया भी खरी गया। तो मित्रों, लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 1991 से हुई और जिसे लगातार कंटिन्यू किया गया 2014 तक, जब तक कि मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो क्या मनमोहन सिंह की सरकार खत्म होने के बाद, यानी कि नई उनके बाद नई सरकार आने के बाद, क्या इसे समाप्त कर दिया गया? नहीं। यहीं पर बात आती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने लुक को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया कि देखो ही नहीं बल्कि अब उस पर काम करना शुरू करो। तो दोस्तों, ये है इसका अर्थ। और जब हम पूर्व कह रहे हैं, देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो ये पूर्व क्या है? पूर्व को आपको समझना होगा। जब वो पूर्व को देखने की बात कर रहे हैं, पूर्व के देशों के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, तो उनका इस पूर्व से मतलब क्या है, अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, एक बात मैं लगातार अपने डेली ऑडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहा हूं, और वो ये कि चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हों, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हों, जब भी किसी स्थान देश का नाम आता है तो आपको चाहिए कि आप एक बार मैप जरूर देखें, एटलस जरूर कंसल्ट करें। देखिए, शुरू जब आप शुरुआत करेंगे तब आपको इनका इतना फायदा दिखाई नहीं देगा, लगेगा कि यार भूल जाते हैं, कुछ समय के बाद घिचपिच हो जाता है, दिमाग में उलझने पैदा हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसे कंटिन्यू कर सके, लगभग मैं मानता हूं कि 6 महीने, अगर 6 महीने तक आप इस निरंतरता को निभा सके तो आप पाएंगे कि पूरी दुनिया का नक्शा आपके दिमाग पर चस्पा हो गया है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके दिमाग में ही नक्शा टंगा हुआ है। ठीक है, वो दीवार पर टंगा है, टंगा रहने दीजिए, और जिस दिन आपको ऐसा महसूस होने लगे, आप मान करके चलिए कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने की दृष्टि से। जी हां, बहुत बड़ी उपलब्धि। देखिए, आप कुछ भी पढ़िए, आप ज्योग्राफी पढ़िए, आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप करेंट अफेयर्स पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, आखिर में उसमें स्थान का नाम तो होगा ना, बिना प्लेस के तो कोई बात नहीं बनती है। जब प्लेस होगा तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि वो प्लेस दुनिया में है कहां, क्योंकि उसके बिना आप उनको इंटर रिलेट नहीं कर पाएंगे, न घटनाओं को समझ पाएंगे, न प्रकृति को समझ पाएंगे, न वहां के प्रोफेशन को समझ पाएंगे, न दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों को समझ पाएंगे। ये आपको करना चाहिए। और अब जबकि आप ईस्ट को समझना चाह रहे हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो ये ईस्ट है क्या? फ्रेंड्स, वैसे सामान्य तौर पर आप देखिए कि दुनिया को दो भागों में बांट कर देखा जाता है ना, ईस्ट एंड वेस्ट। बांट के देखा जाता है ना। देखिए साउथ और नॉर्थ की बात उतनी नहीं की जाती, हालांकि ग्लोब में वो साउथ ग्लोब और नॉर्थ ग्लोब कहना ज्यादा सही है, क्योंकि दोनों के वातावरण में बड़ा फर्क होता है। छह महीने सूरज उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षिणायण होता है। दोनों के जो ऋतुएं मौसम होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती है। साउथ ग्लोब नॉर्थ ग्लोब कहना ज्यादा सही है, और जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें साउथ ग्लोब और नॉर्थ ग्लोब की बात भी आती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की। लेकिन जब हम संस्कृति की बात करते हैं, जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जब हम फिलॉसफी साहित्य कला की बात करते हैं, तो वो साउथ और नॉर्थ ना होकर के वो ईस्ट एंड वेस्ट हो जाता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि भारत कहां है, ईस्ट में है या वेस्ट में? तब आपका उत्तर फटाक से होगा, मैं जानता हूं कि भारत ईस्ट में है। हम पूर्वी राष्ट्रों में आते हैं, पश्चिमी राष्ट्रों में आपके यूरोप के देश और अमेरिका, ये सब पश्चिमी राष्ट्र कहे जाते हैं, तो हम खुद ही पूर्व में हैं। तो फिर ये लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट क्या है? मित्रों आप एक बार थोड़ा सा एटलस उठाइए, एटलस उठा करके आप देखेंगे कि जो एशिया महाद्वीप है, अब आप एशिया महाद्वीप पर आ जाइए, कॉन्टिनेंट पर है राइट। एशिया महाद्वीप के देखिए दक्षिण में, खुद भारत उसके दक्षिण में है राइट तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत है। तो ये पॉलिसी किसकी है? ये पॉलिसी इंडिया की है। तो इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में कौन से हैं, आपको ये देखना होगा। जनरल ईस्ट और वेस्ट नहीं देखना है सामान्य तौर पर, क्योंकि अगर भारत कह रहा है कि मुझे ईस्ट की तरफ जाना है तो वो भारत से ही शुरुआत होगी, और कह रहा है वेस्ट की तरफ जाना है तो भारत से शुरुआत होगी। तो भारत का ईस्ट और वेस्ट कौन सा है, ये आपको देखना चाहिए। तो जब आप भारत के ईस्ट की तरफ देखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको दूसरे राष्ट्र दिखाई देंगे, और आपको ये राष्ट्र बिल्कुल मालूम होने चाहिए, सच पूछे तो रट जाने चाहिए। मैं रटने की बात नहीं कह रहा हूं, जब आप नक्शे में बार बार देखेंगे तो वो ऑलरेडी आपकी समझ में वो चीजें आ जाएंगी। आप भारत के ईस्ट में देखना शुरू कीजिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारे ईस्ट में ही है, इसीलिए उनका नाम भी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जिसमें आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये नॉर्थ ईस्ट में हमारे हैं। और फिर जब आप नॉर्थ ईस्ट के आसपास के राष्ट्रों को देखेंगे तो आपको दूसरे देश समझ में आने लगेंगे, जिसमें आपको बांग्लादेश दिखाई देगा, जिसमें आपको म्यांमार दिखाई देगा, जिसमें आपको थाईलैंड दिखाई देगा, जिसमें आपको वियतनाम दिखाई देगा, कंबोडिया दिखाई देगा, मलेशिया दिखाई देगा, फिलीपींस दिखाई देंगे, ये ढेर सारे राष्ट्र आपको दिखाई देंगे राइट। अब इन्हें हम ईस्ट भी कहते हैं और नो डाउट साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं। देखिए साउथ तो है ही है, जब हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं तो फिर हो गया जो एशिया के साउथ और ईस्ट में हो, तो भारत भी उसके साउथ में है। तो जो साउथ में हो और जो ईस्ट में हो, तो साउथ ईस्ट एशिया। अब क्लियर, यहां ये बात मेरे समझ से हो चुकी होगी आपको कि जब भारत कहता है कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, तो इसका मतलब भी हुआ कि भारत के ईस्ट में जो देश हैं, फिर चाहे वो साउथ ईस्ट ही क्यों ना हो राइट, हमें उनकी तरफ देखना है। देखिए जब देखना है की बात कही जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल देखना है, इसका मतलब है, इसमें जो अर्थ निहित है वो ये है कि हमें उनके साथ अपने संबंधों को बढ़ाना है, या इससे भी ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि हमें इन देशों को तरजीह देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है राइट। अब इंपॉर्टेंस क्यों देनी है, अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई भारत को, क्योंकि आप नक्शे में देखेंगे कि ये बहुत ही छोटे छोटे देश हैं, एकदम छोटे छोटे देश हैं, तो भारत को क्या जरूरत पड़ गई इनको इंपॉर्टेंस देने की। दोस्तों जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो एनालिसिस करने की स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत हुई है ये नरसिंहा राव जी के शासन से हुई है, 1991 में वो प्रधानमंत्री हमारे देश के बने थे राइट, वहां से शुरुआत हुई। अब आप देखिए कि इस समय क्यों शुरुआत हुई, तो आपको ज्यादा इसको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि 1991 के आसपास दुनिया में दो बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई, जिन्होंने ये कह लीजिए कि पूरी दुनिया के नक्शे को बदल करके रख दिया। एक तो लिबरलाइजेशन इसके बाद से बहुत तेजी से शुरू हुआ और भारत भी उसमें शामिल है, 1991 आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हो गया। जब हम आर्थिक उदारीकरण के दौर की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि हमें अब दूसरे राष्ट्रों के साथ अपना व्यापार बढ़ाना है, अपने आर्थिक संबंधों को तरजीह देनी है, हमें मार्केट ढूंढना है, अपने सामान के लिए हमें मार्केट ढूंढना है, और दूसरे देश हमारे यहां पूंजी निवेश करें इसके लिए भी हमें दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने हैं कि वो हमारे यहां आए और हमारे यहां पैसा लगाएं, हमारे यहां उद्योग लगाएं, राइट? इन दो चीजों के लिए हमें दूसरे देशों से संबंध बनाने की जरूरत पड़ी। दूसरा, इसी समय जो दूसरी जो घटना घटित हुई थी फ्रेंड्स, वो है रशिया का बिखर जाना। यूएसएसआर बिखर करके रूस रह गया, 15-16 देशों में बिखर गया। अब आप छोटे छोटे राष्ट्रों के नाम पढ़ते हैं, हमारे यहां वो आते भी रहते हैं, हमारे यहां से भी लोग जाते रहते हैं, कजाकिस्तान जैसे छोटे छोटे आप देश पढ़ते हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब छोटे छोटे राष्ट्र पहले सब यूएसएसआर में थे, लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर का विखंडन हुआ तो ये सब स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। अब देखिए कि जब राष्ट्र, जब यूएसएसआर बिखर गया, अभी तक दुनिया दो ताकतों के बीच झूल रही थी जिसमें हम गुटनिरपेक्ष थे, एक अमेरिका दूसरा रशिया। अब रशिया खत्म हो गया तो अब कौन सी ताकत बच गई? एक ताकत हो गई, रह गई केवल, और वह है अमेरिका, राइट? इसी बीच क्या हुआ मित्रों? इसी बीच जो चीन है उसने 1980 से अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोलने शुरू कर दिए थे, और 1990 तक पहुंचते पहुंचते ये कह लीजिए कि वो काफी कुछ ठीक ठाक हो गया था। आज जितना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी आधारभूमि तैयार कर ली थी, अपनी बेसिक्स तैयार कर ली थी, राइट? रशिया बिखर गया, भारत से रशिया के बहुत अच्छे संबंध थे, तो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया, क्योंकि अब जिसके जिससे हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, जो इतना शक्तिशाली राष्ट्र था, वो बिखर चुका है। तो अब हम क्या करें? और हमारे ही एरिया में, इसी कॉन्टिनेंट में, चाइना जो हमारे बॉर्डर से लगा हुआ है, वो इस समय तक इतना शक्तिशाली हो चुका है, उसकी आर्थिक क्षमता ले लीजिए, सैन्य क्षमता ले लीजिए, इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसका मन, उसकी इच्छा ये हो रही है कि इस क्षेत्र में अपना विस्तार किया जाए। इस क्षेत्र में जब विस्तार करने की बात कहते हैं तो आप कह लीजिए प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र, इस क्षेत्र में अपना विस्तार किया जाए। आपको मालूम है कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, राइट? और उसके बाद से भारत चाइना के प्रति थोड़ी सी सतर्क नीति भी अपनाने लगा है, और चाइना अब लगातार फैलता चला जा रहा है। इस बीच में कुछ देशों के साथ उसके संबंध बहुत निकट के हो गए, और अभी तो आप देखिए कि कितने निकट के जो संबंध थे वो निकटतम के संबंध हो गए हैं। पाकिस्तान से वो कितना क्लोज हो गया है, बांग्लादेश के क्लोज होता जा रहा है, नेपाल के बहुत ही क्लोज हो गया है, श्रीलंका और मालदीव में उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। देखिए सारे के सारे वो देश हैं जो ईस्ट एशिया में आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में आते हैं, और भारत इनके निकट है, और सबका सब आप इन सबके लोकेशन देखिए तो ये आपको पता लगेगा हिंद प्रशांत क्षेत्र में है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास ये लोग फैले हुए हैं। तो चीन का यहां प्रभुत्व बढ़ने लगा धीरे धीरे, और यह नहीं कि कोई चीन वहां अपनी ताकत दिखा करके अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, साम्राज्य बढ़ा रहा है, नो, उनकी मदद करके, या यह कह लीजिए कि आर्थिक संबंधों को विकसित करके। तो मित्रों, भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया दोनों दृष्टियों से, एक तो आर्थिक उदारीकरण के कारण उसे बाजार चाहिए जहां वो सामान निर्यात कर सके, वहां के लोगों से पूंजी अपना बुला सके, और दूसरा ये सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, क्योंकि इन देशों के साथ चाइना के बहुत अच्छे संबंध बढ़ने से अब भारत के लिए थोड़ी सी एक आशंका तो हो गई, क्योंकि चाइना इनका इस्तेमाल कर सकता है, चाइना पर भरोसा करना उतना थोड़ा सा मुश्किल है। आप देखते हैं ना उधर अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम वगैरह में क्या क्या प्रॉब्लम होती रहती है, लगातार होती रहती है। वो कहते हैं कि अरुणाचल में क्यों पहुंच गया हमारे मिनिस्टर, अरे भैया क्यों नहीं पहुंचेंगे हमारे मिनिस्टर, वो हमारे देश का अंग है, तो उस पर आपत्ति करता है। तो चाइना के ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अभी तक हो क्या रहा था कि हमारे जो संबंध थे वो चल रहे थे, सामान्य तरीके से चल रहे थे, हम धीरे 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 संबंधों को बढ़ा रहे थे, और एक अच्छी बात हमारे पास ये थी कि चाइना के साथ इनके कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं रहे हैं, भारत के तो बहुत इनके साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। आप देखिए कि जो बौद्ध धर्म, इनके बहुत से राष्ट्रों में अभी भी बौद्ध धर्म मूल धर्म है, बौद्ध धर्म, और वे उस समय भेजे गए थे सम्राट अशोक के समय में, और इसके बाद जो चोल राजा हुए हैं, जो साउथ में हुए चोल शासक, उनके साथ तो इनके बहुत जबरदस्त संबंध रहे हैं, मतलब व्यापारिक संबंध होते थे। हमारे यहां से जहाज सामान के जहाज वहां जाते थे, तो हमारे पास एक डोर है, एक बेस है दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध स्थापित करने के। तो जब धीरे धीरे विकसित होते रहे, लेकिन जब मोदी साहब जी प्रधानमंत्री बनकर के आए, नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब काफी आधार भूमि तैयार हो गई है, अब एक्ट करना चाहिए। एक्ट का मतलब है यहां कि अब थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। जो हमने नीतियां बनाई हैं और जो हम संबंध विकसित करना चाह रहे हैं, अब उस पर तेजी के साथ काम करना शुरू करना चाहिए, तेजी के साथ। और इसके केंद्र में जो उन्होंने बात कही वो ये है कि केवल सामान्य रिलेशन से बात नहीं चलेगी, वो सब छोटे राष्ट्र हैं, छोटे छोटे राष्ट्र हैं, भारत एक बड़ा राष्ट्र है, पॉपुलेशन की दृष्टि से भी, जीडीपी के भी दृष्टि से, रिसोर्सेस की दृष्टि से, प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से, तो हमें उनकी मदद करनी है, उनका सहयोग करना है। केवल ये नहीं कि केवल बिजनेस टर्म्स ही उनसे डिक्टेट करने हैं, तो आप मदद कैसे करेंगे? तो भारत ने मदद करने की नीति अपनाई, उनको सम्मान देने की नीति अपनाई। अब आप देखिए कि इस बीच में हमारे प्रधानमंत्री हों, फिर राष्ट्रपति भी हों, इन छोटे छोटे देशों में गए हैं। उनके यही देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, तो उस समय इनको आमंत्रित किया था, इन देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को। और फिर इस बार के रिपब्लिक डे में जो 2018 का जो हमारा गणतंत्र दिवस था, देखिए कि एक साथ इतने अतिथियों को गणतंत्र दिवस में आमंत्रित किया गया। तो ये छोटे राष्ट्र हैं लेकिन समान हैं। छोटे राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि हमसे छोटे हैं, यूएनओ में इनका उतना ही अधिकार है और उतना ही वजन है जितना हमारा है मतदान की दृष्टि से, तो हमें इनकी मदद करनी है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसे ही कुछ भारत की उपलब्धि होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल तुरंत ऑफर कर देते हैं। जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का अब लोहा पूरी दुनिया मान रही है, तो वो कहते हैं कि नहीं, अंतरिक्ष में आइए, हम आपके सैटेलाइट छोड़ते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, हम आपको वो कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो हमारा नॉर्थ स्टेट, जो नॉर्थ उत्तरी पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वो भी हमारी जरूरत है कि इस रूप में कि हम अब इन देशों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाएं, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप देखें इंसर्जेंसी होती रहती है, वहां से मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी होती रहती है, वो उग्रवाद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो अगर हमारे संबंध इन सबसे भी बेहतर हो जाएं तो इन सब तरह की इन समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए कि हालांकि बर्मा में पहले तानाशाही शासन था, लेकिन भारत ने 1990 के बाद से धीरे धीरे उनसे संबंध ठीक करने शुरू कर दिए थे वही लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, और अब तो बहुत ही अच्छे हो गए। कुछ समय पहले आपने देखा कि वर्मा की जो हेड हैं वो आई थी, भारत आई थी, तो अब संबंध भारत के धीरे धीरे तेजी से विकसित हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से आप देखिए कि रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट्स से उनसे इनको जोड़ा जा रहा है, तो इससे न केवल भारत सीधे सीधे इनसे जुड़ेगा ही, बल्कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनके भी आर्थिक विकास को बहुत अधिक गति मिलेगी। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ जानकारियां आपको लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट के बारे में दी हैं, बहुत ही बेसिक जानकारी दी है मैंने, ताकि आपके दिमाग में इन सब चीजों के बारे में क्लैरिटी आ सके, है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब इसको आधार बना करके जब आप इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को इस इजाजत के साथ समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा कि आज शुक्रवार है, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। बीच के ये 2 दिन आपके बड़े खुशनुमा तरीके से व्यतीत हों, इन शुभकामनाओं के साथ अब मैं आप सबको अपना अभिवादन करता हूं। नमस्कार।